ओम शांति। तो आज का विषय है लॉ ऑफ स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म के सिद्धांत अर्थात आध्यात्मिकता के नियम, कायदे, मर्यादाएं। कहते हैं कायदे में ही फायदा है, जितना कायदे हम पर चलते हैं उतना ही स्वयं के लिए फायदा होता है। तो अध्यात्म जो है एक हमें पुरानी दुनिया से नई दुनिया की ओर ले जाता है, एक नए विचारों का उदय होता है अध्यात्म से। जैसे हमारी लाइफ परिवर्तन होती है लौकिक से अलौकिकता की ओर, तो एक नया सवेरा जीवन में आता है, जो नए विचारों का आगमन होता है मन में और हमारे सोच संकल्प विचार सब धीरे धीरे परिवर्तन होते हैं। आत्मज्ञान का जहां एक साधना शुरू होती है, हमें पता चलता है कि हम कौन हैं। आध्यात्मिकता अर्थात ही आत्मिक अध्ययन, आध्यात्मिकता आत्मिक अध्ययन। हम जितनी भी साधना कर रहे हैं वो सारी आत्मा के स्तर पर है, शारीरिक स्तर पर नहीं। तो अध्यात्म से हम जुड़ते हैं तो हमारा एक विचार धारा जो परिवर्तन होती है, तो हम अधिक से अधिक समय जो है वो आत्मा के बारे में चिंतन करने के लिए तत्पर रहते हैं। आत्मानुभूति, आत्मा क्या है, कहाँ से आई है, कहाँ जाना है, और सारा मुरलियों का सार भी देखेंगे तो बाबा ज्यादा जोर किस चीज पर देते हैं, अपने को आत्मा समझो। भले सांसारिक ज्ञान में भी हमें आत्मा के बारे में सुनते थे लेकिन उसकी अनुभूति नहीं थी। हम सब से परिचित थे कि शरीर के अंदर आत्मा है लेकिन अनुभूति नहीं थी, लेकिन अध्यात्म से जुड़ने के बाद आत्म अनुभूति होती है। फिर धीरे धीरे हम जब आगे बढ़ते हैं तो पहले तो हमको पता था कि शरीर में आत्मा है, लेकिन हम जब जुड़ते हैं तो पता चलता कि आत्मा में बहुत सारे शरीर घुस गए हैं, बहुत सारी स्मृतियां हैं। जब हम स्मृति में बैठते हैं याद में बैठते हैं तो मन में क्या होता है, आत्मा के अंदर कई सारी तस्वीरें उभर कर आती हैं, और वो तस्वीरें किस चीज की होती हैं, देहधारियों की, व्यक्ति, वस्तु, वैभव। तो आत्मा के अंदर जैसे बहुत सारे शरीर घुस गए हैं, है ना, स्मृतियां विस्मृति का खेल फिर चालू हो जाता है। जब हम यथार्थ स्मृति रहती है कि हम कौन हैं, कहां से आए हैं, कहां जाना है, तो वो स्मृति हमें देह के तल से ऊपर ले जाती है, और जैसे हम विस्मृत होते हैं तो फिर वही पूरा जो अंदर में एक संसार बसा हुआ है देहधारियों का, व्यक्ति, वस्तु, वैभव या जो भी हमने उपभोग किए हैं पुराने जन्म में अर्थात इस ब्राह्मण जीवन के पहले, तो वो सारी स्मृतियां मानस पटल के ऊपर आती हैं। तो अध्यात्म हमें एक मार्ग दिखाता है इस शरीर में रहते हुए अशरीरी बनने का। अध्यात्म वास्तव में एक तपस्या है, साधना है। जितना हम इस पथ पर आगे बढ़ते जाते हैं उतना अध्यात्म की परिभाषा भी बहुत गुही होती जाती है, उतना भी परिवर्तन की प्रक्रिया भी आरंभ होने लगती है। जैसे जैसे हम साधना में साधना के विभिन्न अभ्यास करते हैं, वैसे वैसे ही आत्मा इस शरीर से अपने को एक अलग अलौकिक शक्ति का, जैसे आत्मा में संचार हो रहा है, ऐसे वो अनुभव होने लगता है। तो जैसे बाबा ने हम सबको ईश्वरीय मर्यादाएं अथवा नियम बताए हैं ना, वैसे भी हम संसार में देखते हैं कोई भी हम कर्म करते हैं अगर कायदे मुजब नहीं करते हैं तो उसमें सफलता भी यथार्थ नहीं मिलती है। चाहे हम चल रहे हैं, चाहे बोल रहे हैं, चाहे देख रहे हैं, चाहे समुद्र संपर्क में आ रहे हैं, हर चीज के नियम होते हैं, और बाबा ने हम सबको नियमों में बांध कर हमको आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित किया है अनेक शिक्षाओं के माध्यम से। जैसे यातायात के भी नियम होते हैं, अगर हम उन नियमों का पालन नहीं करते हैं तो जुर्माना हो जाता है, लेकिन यहाँ तो नियम जो अपने स्वयं को ही फॉलो करने हैं, और हम इनका पालन नहीं करते तो स्वयं को ही दंडित कर रहे हैं। आगे जो फाइल की जो फाइल बढ़ती जा रही है उसका फाइन भरना नहीं भरना वो तो बाद की बात है, लेकिन वर्तमान जीवन में हमें अगर हमारा मन बुद्धि विचलित हो रहा है, मर्यादाओं के खिलाफ जा रहा है, उल्लंघन कर रहे हैं श्रीमत का, तो जैसे स्वयं को हम दंडित कर रहे हैं, ईश्वरीय सुख से वंचित कर रहे हैं, तो नियम मर्यादाओं में स्वयं को बांध कर रखना, जो भी ईश्वरीय सिद्धांत हैं उन सिद्धांतों के अनुरूप स्वयं को जीवन को ढालना, वैसे चलना, तो एक आत्म संतुष्टि का अनुभव होता है। तो इस अध्यात्म पथ में सबसे पहले हम सबको जो नियम बताया बाबा ने, जैसे हम इससे जुड़े तो ब्रह्मचर्य का पालन। ब्रह्मचर्य की एक साधना है, जैसे कहते हैं दिनचर्या, ऐसे एक ब्रह्मचर्य अर्थात ब्रह्मा के आचरण पर चलने वाले। जैसे लौकिक में सामान्य दिनचर्या होती है तो उसमें हमको ज्यादा सोचना नहीं पड़ता है, नेचुरल वो हमारी दिनचर्या चलती रहती है। ऐसे ही हमारी जो ब्रह्मा कुमारी लाइफ है, इस लाइफ से जुड़ने के बाद जैसे हमारा जीवन ब्रह्मा के आचरण पर, एक हमारे सामने ब्रह्मा बाबा एग्जाम्पल है, उदाहरण मूर्त है, आदर्श मूर्त है, एक प्रेरणा स्रोत है हमारे लिए, हमारे जीवन के पथ प्रदर्शक हैं। तो नियमों के अनुरूप अगर हम अपने को ढालते हैं, कदम पर कदम रखते हैं, तो जो हमारा पहला फाउंडेशन है पवित्रता ब्रह्मचर्य, उस पर चलना सुगम हो जाता है, क्योंकि जन्म जन्म से आत्मा के अंदर आत्मा देह के संबंध संपर्क में रही। जो पिछले संडे बाबा ने दो मुरलियां चलाई, देह का भान, फिर देह के संबंध अर्थात जो कर्मेंद्रियों का ये संसार है इसके संबंध में आत्मा पूरा दिन वह रहती है, उससे न्यारे, देह के भान से न्यारे और कर्मेंद्रियों के संबंध से न्यारे, उससे हम धीरे धीरे डिटैच होने की प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन वो तभी हो पाती है जब हमारा पहला फाउंडेशन पवित्रता मजबूत है। पवित्रता भी दिन प्रतिदिन गुही होती जाती है। पहले तो ब्रह्मचर्य की पालना, फिर उसके बाद दृष्टि की पवित्रता, मन बुद्धि संकल्प संस्कार संबंध संपर्क सूक्ष्म अति सूक्ष्म, यहां तक कि बाबा कहते स्वप्न मात्र भी तक भी पवित्रता भंग ना हो। तो धीरे धीरे पवित्रता के ऊपर जब हम जितना फोकस करते हैं अर्थात जितना अटेंशन रखते हैं उतना फिर बुद्धि स्थिर होने लगती है, क्योंकि परम पवित्र ज्ञान जो है बुद्धि में तभी ठहरता है जब आत्मा पवित्र बनती है या बुद्धि रूपी बर्तन जो शुद्ध होने लगता है। नहीं तो हम जितना मर्जी सेवा के क्षेत्र में आगे जाएं या स्वयं को प्रख्यात करने के अनेक प्रयास करें, फिर वो पवित्रता हमारी इतनी मजबूत नहीं होती है। तो प्योरिटी का जो फाउंडेशन है, ये एक अध्यात्म का पहला नियम है, पहली सीढ़ी है, प्रथम सोपान है, जो हमारा अगर मजबूत नहीं है तो आगे वाले जो कदम हैं या हम जो ब्राह्मण लाइफ में जी रहे हैं फिर वो सुख की शुरुआत नहीं होती। अगर पवित्रता कमजोर है तो फाउंडेशन ही हमारी अगर हिलती रहेगी तो ब्राह्मण लाइफ में भी आगे बढ़ते रहेंगे तो जीवन में वो एक संतुष्टता का अभाव रहेगा, सेटिस्फेक्शन नहीं रहेगी। भले बिन बाबा कहते संकल्प तो आएंगे लेकिन कर्म में नहीं आना है। अगर हम इसके ऊपर अटेंशन रखते हैं तो संकल्प तक भले आ रहे लेकिन उन संकल्पों को स्टॉप करने की हमारे अंदर में बाबा वो शक्ति बरता है, अगर हम स्वयं इस मार्ग के ऊपर अपना अटेंशन रखते हैं। अगर हमारा स्वयं का अटेंशन नहीं है, मर्यादाओं के खिलाफ चल रहे हैं, जो आया वो देख रहे हैं, जो आया वो सुन रहे हैं, सीन सीनरियां तो आएंगे लेकिन उसमें हमको अलिप्त नहीं होना, वहां लिप्त नहीं हो जाना है, अलिप्त रहना है। नहीं तो वो सीन सीनरियां हमारा एक अलग से मन बुद्धि में संस्कार बन जाता है, फिर अंदर में मन में विचारों का जैसे कोलाहल, जैसे अनेक व्यर्थ संकल्पों का जैसे तूफान आता है और उस तूफान में बहकर हम सब फिर दिल शिकस्त हो जाते हैं। फिर उस अध्यात्म मार्ग का जो सुख अनुभव होना चाहिए उससे हम दूर हो जाते हैं। तो अध्यात्म मार्ग जो पहला सिद्धांत को हो, नियम को हो, मर्यादा को हो, जिसको मजबूत करने के लिए हमें पहले सिद्धांत पर चलना आवश्यक है और बहुत सूक्ष्म अति सूक्ष्म से ब्रह्मचर्य का पालन अर्थात पवित्रता के फाउंडेशन को बहुत मजबूत करना। तो दिन प्रतिदिन हमारी जो पवित्रता का फाउंडेशन है वो मजबूत होते रहना चाहिए, उसके लिए हमें स्वयं को अटेंशन रखना है। जितने भी सिद्धांत हैं, नियम है, ईश्वरीय मर्यादाओं के, उन नियमों के अनुसार कोई ना एक सम्मान लेकर उससे हमको जोड़े रहना है। जैसे मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, पवित्रता के सागर की संतान हूँ, मैं उसके साथ कंबाइंड हूँ और निरंतर पवित्रता की सरिता जैसे मुझ पर बह रही है और निरंतर पवित्रता के प्रकंपन वाइब्रेशन चारों ओर प्रवाहित हो रहे हैं, तो इस फाउंडेशन को मजबूत करने के लिए हमें स्वयं ही चलते फिरते उठते बैठते जब भी हमें समय मिले इस सिद्धांत को, इस नियम को हमको पक्का करना है, ब्रह्मचर्य का पालन अर्थात पवित्रता का फाउंडेशन। तभी अध्यात्म जो है या ईश्वरीय ज्ञान जो है हमारी बुद्धि में टिक पाएगा। अगर हम इस नियम का उल्लंघन करते हैं तो बोले हम सुन रहे हैं, ज्ञान योग कर रहे हैं, लेकिन प्रगति का अनुभव नहीं होगा। जीवन में जो हमारी उन्नति होनी चाहिए वो उतना अनुभव नहीं होगा। तो सबसे पहले हम सबको इस फाउंडेशन को मजबूत करना है, ब्रह्मचर्य का फाउंडेशन अथवा पवित्रता का फाउंडेशन। दिन प्रतिदिन हमारा कर्मेंद्रियों के ऊपर इतना नियंत्रण हो जाए, जैसे बाबा कहते हैं स्वराज्य अधिकारी, आंखें जो देख रही हैं या मुख जो बोल रहा है या कान जो सुन रहे हैं उसी अनुसार चले जो हमें बाबा ने श्रीमत दी है। जैसे 3 संडे पहले मुरली थी ना, जो बाबा के मुख से बोल निकले वो ही तुम बच्चों के बोल होने चाहिए, है ना। कान वही सुने जो भगवान सुना रहा है, खैर बातें सुनाई देंगी बाहर की भी सबकी, लेकिन वो हमें प्रभावित नहीं करें, वो हमारे अंदर में समाए नहीं। बाबा के महावाक्य या जो भी ईश्वरीय नियम मर्यादाएं हैं वो हमारे मन बुद्धि के अंदर जैसे गूंजती रहें। तो पहला फाउंडेशन है ब्रह्मचर्य का अथवा पवित्रता का। फिर दूसरा, इस ब्रह्मचर्य के फाउंडेशन को मजबूत करने के लिए दूसरा सिद्धांत अध्ययन, पठन पाठन, मनन चिंतन। जब तक हम अपने मन बुद्धि को बिजी नहीं करेंगे तब तक हमारा मन बुद्धि जो पहले से ही बाहर के संसार में बाहर के संसार से जुड़ा हुआ है उसी चिंतन में रहेगा। तो हमको अध्ययन मनन चिंतन के लिए भी खुद ही स्वयं के ऊपर अटेंशन देना है, पहरा देना है कि हम कितना उसको महत्व दे रहे हैं, कितना हम उसको अप्लाई कर रहे हैं। चाहे 4 महावाक्य 2 महावाक्य हैं फिर भी थोड़ा सा टाइम देकर हमें स्वयं को उसको धारण करना है। कोई भी एक महावाक्य लेकर उसका मनन चिंतन करना, अध्यात्म जैसे बाबा कहते हैं कि तुम एक आत्मा हो, है छोटा सा सेंटेंस लेकिन सारे सार तो यही ज्ञान का देखेंगे या महसूस करते हम कि जो पहला पाठ है वही हम सबका अंतिम पाठ है। तो हम सारे दिन में उसका अनुभव कितना कर पा रहे हैं, हर कर्म में हम जैसे साक्षी होकर या निमित्त भाव समझकर या उसको ट्रस्टीपन परन्यासी समझकर कैसे कर रहे हैं, वो सारे दिन में कितना भाव रहता है, कितना बॉडी से हम डिटैच हो पा रहे हैं। तो कोई ना कोई एक टॉपिक लेकर उस पर मनन चिंतन करना अति आवश्यक है, चाहे वो स्लोगन से या वरदान से या मुरली के महावाक्य से। जैसे कल के मुरली में था कि बाबा ने कल तलाशी अभियान चलाया। कौन सा था तलाशी अभियान? बाबा कौन से बच्चे को तलाशते हैं? हाँ, जो स्वभाव के बहुत मीठे हैं, आज्ञाकारी हैं, मददगार हैं, प्रमाण बरदान हैं, सर्विसेबल हैं, तो बाबा उन बच्चों को तलाश रहे हैं। तो हम सब उसी में हैं, उसी कैटेगरी में, तभी तो हमको तलाश के अपने साथ बाबा ने जोड़ा, उसमें मददगार बनाया। लेकिन मददगार तो बना लिया, फिर उसके आगे क्या हम उसकी मदद के अनुसार हम पूरा खरा उतर पा रहे हैं या अपनी मर्जी के अनुसार जितनी मदद करनी चाहिए उतनी कर पा रहे हैं? जितना सामर्थ्य है जो बाबा ने हम सबके अंदर शक्ति भरी है उसको क्या हम बांट रहे हैं, उसको हम बढ़ा रहे हैं? जितनी बाबा ने हम सबको मदद की है उतनी मदद क्या हम दूसरों को कर रहे हैं निस्वार्थ रूप से? तो मनन चिंतन अति आवश्यक है, क्योंकि मन जब खाली होता है तो खाली मन शैतान का घर कहा जाता है। तो 63 जन्म तो शैतानी विचार ही हमारे मन बुद्धि में रहे, भले थोड़ी बहुत भक्ति पाठ पूजा तो किया लेकिन वो सब है बाबा कहते हैं आसरी सामग्री है, वो है ना, शास्त्रों की सामग्री है और वो सब भूसा के समान है। लेकिन बाबा के ज्ञान, बाबा के ज्ञान से जुड़ने के बाद जो भी ज्ञान के विभिन्न बिंदु मिलते हैं, जो हमारे लिए एक हमारे श्वास को एक सुखेला करते हैं, सहज रूप से करते हैं, तो हमको मनन चिंतन अति आवश्यक है। बड़ा सिंपल तरीके से मनन चिंतन करने के लिए कोई विशेष मेहनत करने की जरूरत नहीं है। वैसे अगर ज्यादा मनन चिंतन नहीं होता है तो हम जितना बाबा से हमको ज्ञान मिला कम से कम वही सोचे। जैसे साकार मुरली बाबा कहते चलाते हैं तो उसमें टॉपिक कंटिन्यूस एक से एंड तक एक ही नहीं होता है, बहुत सारे टॉपिक होते हैं। जैसे समुद्र की लहरें चल रही है, उसी तरह कोई भी एक टॉपिक ले रहे हैं, जैसे बाबा पतित पावन ज्ञान का सागर है, तो अभी पतित पावन बाप आए हैं, तुम आत्मा को पावन बनाने के लिए ये सृष्टि भी पतित हो गई है, पतित बनाया रावण ने, अब रावण है तुम्हारा दुश्मन, अब दुश्मन को याद थोड़ा किया जाता है, दुश्मन तो दुश्मन को क्या करना है, उसको जलाया जाता है, तो तुम बच्चों को भी जलाना है, कैसे, योग अग्नि से जलाना है, योग अग्नि का योग अग्नि जलाकर रखनी है ना, योग अग्नि अर्थात स्मृति बाबा की याद। तो हम ऐसे कोई भी अपनी साकार मूल्य अलग से बना सकते हैं, वो किसी को बताने की जरूरत नहीं है, लिख सकते हैं उसको। तो मनन चिंतन ये सिद्धांत ये नियम में हमें अपने को बांधना है अगर हम अध्यात्म का सुख लेना है तो। हाँ, कौन चलाएगा, निखिलेश भाई चलाएंगे, तो ये जरूरी है। तो पहला हो गया सिद्धांत ब्रह्मचर्य की पालना, पवित्रता का फाउंडेशन में स्वयं को मजबूत करना है, और दूसरा मनन चिंतन, और तीसरा है योगा अभ्यास, राजयोग का अभ्यास। जो भी बाबा ने हमें विभिन्न सोमान दिए हैं, बहुत सारे सोमान दिए हैं, लंबे समय से उसका अभ्यास करने के बाद ही उन सोमान की अनुभूति होती है। केवल रटने मात्र तक नहीं, शुरू शुरू में तो रटने मात्र तक ही होता है, या शुरू शुरू में बाबा ने हाथ हमारा पकड़ा होता है तो अनुभूतियां होना सहज होती हैं, लेकिन जैसे जैसे हम ज्ञान में आगे बढ़ते जाते हैं तो बाबा भी अपना हाथ ढीला कर देता है ना, कि अभी बच्चे शक्तिशाली हो गए हैं, अभी अपने दम पर चलें। जैसे माँ बाप भी बच्चों को कब तक मालिश वालिश करेंगे, बड़ा होंगे थोड़े करेंगे, छोड़ देते हैं फिर। ऐसे हम सब जैसे बड़े होते जाते हैं तो बाबा भी हम सबको अपने पांव पर खड़ा रहने सिखाते हैं, फिर बाप के मददगार बनते हैं। तो जो भी विभिन्न सोमान दिए गए हैं उनका हमें अनुभव करना है, जैसे और वो वाले सोमान जो हमको इस शरीर से डिटैच करें। जैसे बाबा कहते हैं तुम मास्टर बीज रूप हो, तो ये बीज रूप की स्थिति हमारी इस दुनिया की नहीं है, परम धाम की स्थिति है। तो ये स्थिति या ये स्मृति हम सबको इस बॉडी से डिटैच करती है, हमारे मन बुद्धि को ऊपर की तरफ ले जाती है, इस देह से हमको किनारा कराना सिखाती है। तो ऐसे एक सोमान है जिस सोमान से हम इस बॉडी से सहज रूप से डिटैच हो सके, इस संसार से जैसे हमारी एक अनासक्त भाव जागृत हो जाए, परम धाम की स्थिति, मैं बाप दादा के साथ कंबाइंड हूँ, ये सूक्ष्म वतन का सोमान हो गया, या मैं शिव बाबा के साथ कंबाइंड हूँ, परम धाम का हो गया, मैं जागती ज्योत हूँ, परम धाम का सोमान हो गया, मैं अशरीरी हूँ, निराकारी हूँ, इन स्थितियों का सोमान का निरंतर अभ्यास जो हमें करते रहना है, ताकि हम इस देह में रहते हुए विदेही स्थिति का अनुभव कर सके। जैसे बाबा कहते हैं अंत में तुम बच्चों से ही सबको साक्षात्कार होगा। अब साक्षात्कार ज्योति का तभी होगा जब हम स्वयं को अपने लंबे समय से अपने ओरिजिनल स्वीट होम वाले सोमान में स्थित करके रख सकेंगे, तभी तो कहेंगे जिधर देखता उधर ही तू ही तू है। तो अधिक से अधिक हमें सोमान करना है इस बॉडी से डिटैच होने का, क्योंकि जैसे बताया ना कि आत्मा के अंदर अनेक शरीर घुसे हुए हैं, शरीर के अंदर आत्मा तो है ही है, लेकिन बहुत सारे जो भी हमें सारे दिन में ज्ञान से हटके जो भी स्मृतियां आती हैं वो सब देह से रिलेटेड है, चाहे वो इस जन्म की है या किसी जन्म या इस ब्राह्मण लाइफ से पहले की है। तो हम सबको इस देह से डिटैच होने की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, और अंत में बाबा कहते हैं यही अभ्यास काम में आएगा, एक सेकंड में जब चाहे देह से निहारे, जब चाहे देह में आ जाए। तो लंबे समय से हमको इसमें की साधना करनी है, इसे देह से डिटैच होकर। तो जो भी शरीर से भिन्न भिन्न सोमान है, फिर साकाश देने के सोमान है, मनसा सेवा के जो बाबा कहते हैं साकाश दो, फरिश्ते रूप में स्थित हो सकते हैं, पूरे सृष्टि को हम साकाश दे रहे हैं। तो जो भी हम सबको बाबा ने कर्तव्य मर्यादाएं इनके जो जिम्मेदारी दी है, जवाबदारी दी है, उसको हम पूरे मनोयोग से निभाते हैं, पूरे निष्ठा से निभाते हैं, तो बाबा की मदद का जो अनुभव है सहज रूप से होता जाता है, और फिर एक आत्मिक अतीन्द्रिय सुख अंदर में एक पैदा होता है, एक आत्म संतुष्टि का भाव जागृत होता है। तो तीसरा है योगाभ्यास, जो भी सारे दिन में हमको थोड़ा सा टाइम मिले, चाहे ट्रैफिक कंट्रोल या हम लौकिक में सेवा करते हैं, जॉब करते हैं, थोड़ा सा भी टाइम मिले, और उसमें बहुत अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस होते हैं। हमने भी जब लौकिक जॉब में थे तो जो भी थोड़ा सा टाइम मिलता था उसमें जो अभ्यास करते थे तो जो भी आने वाली प्रॉब्लम होती थी, समस्या होती तो क्लियर टच हो जाती थी, और उस समस्या से पार करना, उसको पार करना बहुत सहज हो जाता था। अगर हम टाइम, क्योंकि आजकल माया भी विभिन्न रूपों से बहुत आकर्षण रूप से चारों तरफ ऊपर नीचे दाएं बाएं सब घूम रही है, तो वो भी अपना अंतिम दाव पेच लगा रही है। तो इन सब में होते हुए हम सबको एक शक्तिशाली योद्धा बनकर, शक्तिशाली पहलवान बनकर हमको इस पर जीत पानी है, क्योंकि स्वयं सर्वशक्तिवान अगर हमारे साथ है तो हम इस ब्राह्मण जीवन में अपने को विजयी अनुभव नहीं करें तो फिर कब करेंगे। तो तीसरा हो गया योग के विभिन्न अभ्यास। पहला था पवित्रता का फाउंडेशन, ब्रह्मचर्य की पालना, अखंड पवित्रता, और दूसरा मनन चिंतन पठन पाठन अध्ययन, इसको बढ़ाते जाना है, और तीसरा है योग के विभिन्न अभ्यास, और चौथा है साक्षीपन की स्थिति। ये भी हम सबको बाबा ने नियम बताया है या सिद्धांत है अध्यात्म का, साक्षीपन की स्थिति। क्योंकि जैसे हम कर्म क्षेत्र पर उतरते हैं, चाहे लौकिक में चाहे अलौकिक में, तो अनेक प्रकार के ऐसे सीन सीरियां या दृश्य हमारे सामने आते हैं जिनको सोचकर लगता है कि ये तो होना नहीं चाहिए, ये तो जैसे मर्यादाओं के खिलाफ है। तो हमको बहुत उस समय साक्षी भाव अपने अंदर एक अच्छी तरह से बिठाना है। अगर हम साक्षी भाव नहीं है तो हम विचलित हो जाएंगे। जैसे आज की जो आज मुरली पड़ी जाएगी उसमें बाबा ने कहा ना, मन बुद्धि विचलित हो जाता है, जहां घृणा है लगाव है। तो मन बुद्धि को विचलित नहीं हो इसके लिए साक्षी भाव का अभ्यास पक्का करना है। जैसे बाबा इस ड्रामा को पूरे पूरे सृष्टि रंगमंच को साक्षी होकर देख रहे हैं, बाबा विचलित नहीं होते, चाहे सुख है चाहे दुख है, चाहे हार है या जीत है, लेकिन बाबा को पता है कि ड्रामा तो बना बनाया, बनी बनाई, बनने बनने को कुछ ना है, तो बाबा विचलित नहीं होते। इसी तरह से हम भी बाबा के बच्चे हैं, तो जो बाप की स्थिति है वही हम सब बच्चों की स्थिति होनी चाहिए। सो साक्षी भाव हमें अपने अंदर बनाकर रखना है। जितना हम साक्षी की सीट पर सेट होते रहेंगे, साक्षी दृष्टा की सीट पर सेट होंगे, उतना बाबा के साथ का अनुभव होता रहेगा, साथीपन का अनुभव होता रहेगा। तो साक्षी दृष्टा भी स्वयं को बनाना है। तो ये चौथा था साक्षी दृष्टा। फिर है पांचवा है अनासक्त भाव, अनासक्त वृत्ति। जो भी हमारे आसपास साधु साधन आते हैं, वस्तु तो व्यक्ति वैभव या जो भी खाने पीने की चीजें, उसमें हमारा अनासक्त भाव हो। अगर हमें सुख की रोटी मिले तब भी सहज रूप से उसको स्वीकार करना है, अगर हमें 36 प्रकार का भोजन मिला तो भी सहज रूप से स्वीकार करना है। समय अनुसार दिन प्रतिदिन परिस्थितियां बदल जाती हैं, तो उसी अनुसार हमको ढालना है, लेकिन नियम मर्यादाओं का उल्लंघन ना हो, ये हमें अपने ऊपर विशेष अटेंशन रखना है। अनासक्त वृत्ति चाहिए, साधनों का भावने का अंत में तुम्हारे सामने ढेर लग जाएगा, ना चाहते हुए भी साधन आएंगे। और आज हम देखते हैं ना चाहते हुए साधन जैसे चारों परिक्रमा कर रहे हैं, लेकिन हमारा उनमें आसक्त भाव तो नहीं पैदा हो रहा है, उनके प्रति अनासक्त भाव हो। कहीं वो हमें आकर्षित तो नहीं कर रहे हैं, कहीं वो हमारी साधना में तो बाधा तो नहीं भर रहे हैं, जो साधना का सुख लेना चाहिए उस सुख से वो साधन वंचित नहीं कर रहे हैं। तो रहते हुए कमल फूल न्यारे और प्यारे, बाबा कहते ना जितना हम न्यारे रहेंगे उतना प्यारे बनेंगे। तो साधनों से भी हमें डिटैच होने का, अर्थात उनसे अनासक्त भाव हमें रखना है। कहते हैं जैसा अन्न वैसा मन, अगर हम आसक्त भाव है हमारा, जितना हम भोजन में हमारी आसक्ति है या अन्य चीजों में आसक्ति है, तो हमारी फिर वृत्ति भी वैसी बनी रहेगी, हमारा दृष्टिकोण वैसा बना रहेगा, हमारा संबंध संपर्क भी बना रहेगा फिर वैसा, और उतना फिर साधनों का संचय करना करेंगे, संग्रह वृत्ति बढ़ती जाएगी। तो हमें लोक कल्याण अर्थ संग्रह वृत्ति करना एक अलग बात है, लेकिन हम स्वयं के अर्थ अगर कोई संग्रह करते हैं तो वे फिर हमारे लिए हानिकारक सिद्ध हो जाती हैं। तो जितना साक्षी भाव हम स्वयं को रखेंगे इस जीवन में, साक्षी भाव पर सेट रखेंगे, तो हमारा जो है निरंतर प्रगति हम अनुभव करते जाएंगे। तो ये कितना हो गया, चौथा है, पांच हो गया भाई, पांचवा कौन सा हुआ ये, और चौथा कौन सा था, और पहला और तीसरा और दूसरा। हाँ, तो पहला था ब्रह्मचर्य पवित्रता का फाउंडेशन, दूसरा अध्ययन मनन चिंतन, और तीसरा योगाभ्यास, चौथा साक्षी दृष्टा, पांचवा अनासक्त भाव, और छठा है दातापन की भावना, देने की भावना। हमारे अंदर अभी बाबा ने हम सबको देवता बनाने का जो लक्ष्य दिया है, तो देवता तो वो बनेंगे वहां, लेकिन वहां दे रहे हैं, किसी को पता थोड़ा नहीं होगा दे रहे हैं, पता तो हमको भी होगा। तो जो भी हमको मिला है ज्ञान गुण शक्तियां, अनेक प्रकार के खजाने मिले हैं, वो हमें देते जाना है निस्वार्थ भाव से। बाबा कहते हैं देने से बांटने से बढ़ता है, हम दाता के बच्चे हैं। तो अगर हमें सुख प्राप्त हो रहा है, इस ज्ञान से हमको सुख प्राप्त हो रहा है, तो उसको हमें अपने तक ही सीमित नहीं रखना है, हमें सबको बांटना है, सबको आगे बढ़ाने के लिए हमें अंदर में एक भाव निरंतर बना रहना चाहिए, क्योंकि ये सभी हमारा अपना परिवार है, चाहे देर से आ रहे हैं चाहे पहले हैं, सभी हम सब एक ही परिवार के हैं। तो परिवार में किसी को पीछे नहीं रखते हैं। अगर परिवार में सबसे प्यार है तो सबकी उन्नति हम अंदर से चाहते हैं। इसी तरह इस ब्राह्मण परिवार में भी हम सबको दातापन की भावना, निरंतर एक दो को शुभ भावना, शुभ कामना, या जो भी ज्ञान गुण शक्तियां, जो भी भाव से हमें अनेक प्रकार के खजाने मिले हैं, उनका हमें निरंतर दान करते रहना चाहिए। जो भी गुण मिले हैं, अपने गुण, अपने में अगर कोई विशेष गुण है वो बाबा की देन है, उसने दिया हुआ है, तो वो प्रसाद समझकर हमें सबको बांटना है, ताकि उस गुण से हम दूसरों को भी आगे बढ़ा सके। तो दातापन की भावना निरंतर हमें बनाकर रखनी है। जैसे दीपक होता है तो रोशनी, वो जो भी दीपक जलाता है तो वो एक तो स्वयं के लिए रोशनी करता है, लेकिन दूसरों के लिए रोशनी करने से पहले उसका जीवन प्रकाशित होता है। अगर हम दूसरों के बारे में दातापन की भावना रखते हैं, तो पहले हम जैसे स्वयं के सुख की सोच रहे हैं, वो पहले स्वयं को ही सुख मिलेगा, दूसरे को दिया नहीं अगर हमने संकल्प भी किया तो वहीं से सुख का अनुभव होना शुरू हो जाएगा। अगर हम बाधा बनते हैं किसी की लाइफ में, या जो भी हमको बाबा से खजाने मिले हैं उन खजानों से दूसरों को वंचित कर रहे हैं, या आगे बढ़ने में कोई ना कोई रोकथाम बाधा पैदा कर रहे हैं, तो सूक्ष्म रूप से आत्मा के जैसे बोझ चढ़ जाता है, फिर बोझ हमको आगे बढ़ने नहीं देता है। बहुत देखा, फिर ये बहुत सारी सूक्ष्म चीजें हैं तो देखा हमने, खैर कमी कमजोरियां दिखाई भी देती हैं, लेकिन हमको तो सब में ये देखना है। लेकिन जब हमने देखा, महसूस किया, अगर हम किसी के पुरुषार्थ में बाधक बन रहे हैं, होता वो एक बहुत सुनहरी रूप होता है, भले हम उसको कहेंगे कि हम आपकी सेवा करें, लेकिन उसमें कोई ना कोई स्वार्थ छिपा होता है, और देखते हैं वो स्वार्थ फिर योग में बैठते हैं तो उनके जीवन में या स्वयं के जीवन में जो भी महसूस करता है, योग लगता नहीं है, बैठते तुरंत नींद आएगी। पर्याप्त नींद करने के बाद भी अगर हमको योग में नींद आती है तो बहुत बड़ा बोझ है, माना दिन में भी नींद की और रात को भी, उसके बाद भी अगर हमको योग में नींद आ रही है तो कहीं ना कहीं तो बोझ है। ब्राह्मण लाइफ में बनने के बाद, ब्राह्मण जीवन अनुभव करने के बाद, तो बाबा ने हम सबको जो वरदान दिया निद्रा जीत भव, तो उसका अनुभव कैसे करेंगे? तो सूक्ष्म अति सूक्ष्म बहुत सारी कमजोरियां जो ब्राह्मण लाइफ में हम कर रहे हैं, और इसका जो बोझ है बाबा कहते हैं एक का 100 गुना चढ़ता है। तो इससे भी हम सबको वो इसके ऊपर अटेंशन देना कि ब्राह्मण लाइफ में भी हम कहीं ना कहीं ऐसे कुछ मायावी संस्कारों के वश होकर अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए किसी को अपने में भी नहीं फंसाएं। हमें तो सबसे डिटैच होना है। कहते जियो तो ऐसे जियो जैसे सब अपने हैं, और जियो तो ऐसे जियो जैसे अपना कोई नहीं है, तो दोनों हमको बैलेंस रखना है। तो ये हो गया दातापन की भावना। और फिर एक और है जो मुख्य है, जो इस ब्राह्मण लाइफ में बहुत अहम है, वो है बेहद का वैराग्य। वैराग्य बहुत जरूरी है। जब तक हमको वैराग्य नहीं है तब तक हम इस लाइफ में आगे बढ़ने में हमको मुश्किल होगी। हाँ जी, हाँ, अनासक्त अलग है, वैराग अलग है। वैराग जैसे चीजों से आसक्ति, तो भोजन से वैराग नहीं होगा, वो अनासक्त भाव है। वैराग है हमें पूरे संसार से, हाँ वो छोटी है, उसी प्रजाति के हैं सारे, लेकिन ये छोटा है, ये बड़ा है। वैराग है बेहद का अनासक्त भाव, बेहद का नहीं कहते हैं, अनासक्त भाव है। और है? हाँ, तो बढ़ रहे ऐसे ऐसे हम लास्ट में पहुंच रहे, तो वैराग्य बड़ा हो गया ना। तो बेहद का वैराग्य, तो बेहद का वैराग्य हम सबको ये निरंतर एक चिंतन रहना चाहिए, क्योंकि वैराग्य अधिक से अधिक किस चीज से चाहिए? देह से वैराग्य। एक तो स्वयं की देह से और दूसरों की देह से। दूसरों की देह भी इतनी अट्रैक्शन नहीं करते जितनी स्वयं की देह के बीच में हम फंसे हुए हैं। तो इस देह के वैराग्य में जगदीश भाई कहते थे, जैसे तो चलती फिरती क्या है, लाशें हैं, ये जिंदा लाशें हैं, और इसके अंदर क्या भरा हुआ है? जैसे एक बहुत सुंदर प्लास्टिक हो, प्लास्टिक की थैली हो, और उसके अंदर माल मूत्र कूड़ा कचड़ा भरा हो, और हमको पकड़ा दिया जाए तो क्या करेंगे? वो ही हम सबके हमने मन बुद्धि के अंदर पकड़ के रखे हुए प्लास्टिक की सुंदर थैलियां और उसके अंदर बहुत सारा कचड़ा है, और जहां कचड़ा होता है टूटे बर्तन होते हैं तो वहां क्या होगा, मक्खी मच्छर पैदा होंगे। तो हम सब कोई बेहद क्या बरा गया शरीर को देखते ही। हाँ, दो भाव है, एक तो है कि ये सब ब्राह्मण कुल के हैं, एक ठीक है पॉजिटिव में है, एक हम सबको एक जो बाबा कहते हैं बहनों को देखते तो ये शिव शक्तियां हैं, या भाइयों को देखते जैसे ये महावीर हैं, ठीक है। लेकिन उसके अलावा भी हम सबको वैराग्य होना चाहिए, क्योंकि अनेक जन्म के संस्कार आत्मा के अंदर भरे हुए हैं देह को देखने के। तो जैसे अनुभव करना है कि जैसे चलती फिरती है जिंदा लाशें हैं, तो ये हमारा मर जीवा जन्म है, तो मरे हुए मुर्दे से क्या लगाव, ये भी तो शरीर के पांच तत्वों का भूत है ये, तो पांच तत्वों के भूत को हम एक भूत तो पहले से बॉडी बैठी है अंदर आत्मा के अंदर, और दूसरे और भी भूत अंदर में प्रवेश कर ले तो क्या होगा, फिर वो भूत अंदर में क्या करेंगे, कोलाहल मचाएंगे, तकलीफ देंगे, स्वयं कोई आपतें खड़ी करेंगे, मुसीबत खड़ी करेंगे। तो हम सबको बेहद के वैराग्य कभी स्वयं की चिंतन करते रहें, जब तक बेहद का वैराग्य नहीं है तब तक इस संसार से जितने भी राग है हमारे जो जुड़े हुए हैं वो फिर हमें आकर्षण करेंगे, तो फिर हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ओम शांति।